ओम शांति। रूस के एक लेखक, विचारक और दार्शनिक फ्योडर डोस्टोयेवस्की ने एक बहुत सुंदर कहानी लिखी है। उसने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट 1800 वर्ष के बाद सोचते हैं कि मैं फिर धरती पर जाऊं, क्योंकि अभी 1/3 वर्ल्ड, 1/3 ये धरती ईसाई बन चुकी है। वो सोचता है कि मुझे फिर से धरती पर एक बार लौटना चाहिए, यह देखने के लिए कि अब वहां क्या हो रहा है। वो समय था जब मुझ पर अत्याचार हुआ और मुझे सूली चढ़ाई गई, तो इस ख्याल से वो धरती पर पुनः लौटता है 1800 वर्ष के बाद। एक सुबह जेरूसलम की उस नगरी में रविवार के दिन सुबह सुबह वो चर्च के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोग चर्च से निकलते हैं और उसको देखते हैं और कहने लगते हैं, ये कौन बहरूपिया है? उससे कहते हैं, तुम कौन हो और ये जीसस क्राइस्ट जैसी शक्ल बना रखी है और कपड़े पहन रखे हैं, एक्टर मालूम पड़ते हो। वो कहता है, मैं एक्टर नहीं, मैं स्वयं जीसस क्राइस्ट हूं। वो कहते हैं, ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हो, नाटक बहुत अच्छा करते हो। वो कहता है, मेरी मानो, मैं ही जीसस क्राइस्ट हूं। वो लोग कहते हैं कि कहां पर लिखा है कि तुम आओगे? बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस तारीख पर तुम धरती पर पुनः आओगे, और ना ही किसी और धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में लिखा है। वो कहता है, मैं ही हूं। तब तक वहां पर चर्च का पादरी आ जाता है, और जैसे ही चर्च का पादरी आता है, वो सारे लोग उसको झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। जीसस क्राइस्ट सोचता है कि मेरे प्रति ऐसा अनादर, और ये जो पोप है, ये जो पादरी है यहां पर, इसका इतना सम्मान। तो वो पादरी पूछता है, क्या हुआ? लोग कहते हैं, ये एक्टर है, आया है यहां पर हूबहू जीसस क्राइस्ट के ड्रेस पहनकर, और कहता है, मैं जीसस क्राइस्ट हूं। वो पादरी कहता है, शरारती आदमी मालूम होता है, पकड़ो उसको और नीचे लाओ। जीसस क्राइस्ट सोचते हैं, ये क्या हो रहा है? ये चर्च मेरा है, ये पादरी मेरे, ये लोग मेरे। एक समय था जब पादरी किसी और के थे, चर्च मंदिर किसी और का था, शास्त्र किसी और के थे, परंतु अब तो ये चर्च भी मेरा, ये लोग भी मेरे, ये पादरी भी मेरा, और फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार। वो पादरी को कहता है, तुम जिसका क्रॉस गले में लटकाए हुए हो, वो मैं ही हूं। पादरी कहता है, इसे चर्च की कोठरी में जाके बंद कर दो। तो जीसस क्राइस्ट हैरान होता है, सोचता है, क्या फिर से सजा होगी? क्या फिर से सूली पर चढ़ना होगा? आधी रात, दिन भर उस कोठरी में बंद, रात हो जाती है, और आधी रात वो पादरी आता है लालटेन लेकर, दरवाजा खोलता है और चरणों में गिर पड़ता है। वो कहता है, मुझे क्षमा करो। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, क्या तुमने मुझे पहचान लिया अब? वो कहता है, पहचान तो मैंने सुबह ही लिया था, परंतु क्या करूं, 1800 वर्ष में जो धंधा हमने बिठाया है, जो दुकान हमने खोली है, वो समाप्त हो जाती अगर तुमको सुबह पहचान लिया होता तो। वो तो अच्छा है, तुम वहीं रहो ऊपर स्वर्ग में और हम तुम्हारी यहाँ भक्ति करते रहेंगे। यदि तुम नीचे आए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये जो हमारी कमाई हो रही है उसका क्या होगा? ये जो हमारा बिजनेस बना रखा है हमने, उसका क्या होगा? इसलिए तुम ऊपर ही ठीक। और तुमको बता देता हूं, जब तुम थे और वो जो पादरी थे, ऐसा मत समझना कि वो तुम्हें नहीं जानते थे, वो भी जानते थे कि आदमी बहुत ठीक है, परंतु उनके पेट का सवाल था। बाद में जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ पता नहीं, शायद वो चला गया होगा। वर्तमान जगत संसार चारों ओर धर्म के नाम पर पाखंड, झूठ, मिथ्याचार, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जो व्यक्ति हो के गए जब वो जीवंत थे, तब उनके प्रति कोई सम्मान नहीं था, उनके प्रति तब रिकॉग्निशन नहीं था। वो जाने के बाद, उनके मरने के बाद, उस महात्मा को, उस अवतार को, धर्म गुरु को अनुयायियों ने अपनी मुट्ठी में ले लिया, फिर उसके साथ जो करना चाहा वो किया, अपने अनुसार सिद्धांत बनाए, मंदिर बनाए, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए, आश्रम बनाए, और ऐसा ही व्यापार, ऐसा ही धर्म का व्यापार, ऐसी ही हिपोक्रेसी सारे जगत में चल रही है। जब ऐसा झूठ का बोलबाला संसार में हो जाता है, जहां चारों तरफ दंभ ही दंभ है, तब भगवान इस धरा पर आकर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अब तक के जो मनुष्यों के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स, मते थी, वो सब एक तरफ। सुबह की मुरली में एक वाक्य था, वो कहते हैं भगवान ब्रह्म है, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा ब्रह्म है। ऐसे भ्रांति में जब संसार फंस जाता है, जब चहुओर झूठ ही झूठ, जब मनुष्य के जीवन में अंदर झूठ और बाहर झूठ, तब भगवान धरा पर आते हैं। मीरा के बहुत सुंदर वचन है, और जिस पर आज की क्लास चर्चा हम करेंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठो सब संसार, क्यों करे जंजाल, कौन करे जंजाल, जब जग में जीवन थोरो, झूठी माया, झूठी काया, झूठो सब संसार, जब संसार ही झूठा है, जब ये जो माया का आवरण है, इस संसार की चमक तमक है, वो सब झूठी है। ये जो काया है, ये जो देह है, ये जो शरीर है, और इसके साथ जुड़ा जो कुछ है, सब कुछ झूठ, सब कुछ मिथ्या। ऐसी यहां झूठी माया है, झूठी काया है, और सारा संसार ही असत्य है, झूठ है। तो माया ने सबका खाता घाटे में डाल दिया। माया आजकर ने अच्छे अच्छे लाल को भी खा लिया। कल था ऐसा जब माया का झूठ खंड और झूठा साम्राज्य होता है तब भगवान आते हैं सत्य धर्म की स्थापना करने और हम सब की सभी ब्राह्मणों की वहां रचना होती है सत युग में जाने के लिए सत धर्म की स्थापना और सत धारणाएं भगवान हमें समझाते हैं। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा माया के उन स्वरूपों को करेंगे जो कि ब्रह्म है परंतु सत्य भासते हैं। उस संसार को हम छोड़कर आ गए परंतु इस ब्राह्मण संसार में रहते हुए भी ऐसी कुछ बातें ऐसे कुछ माया के स्वरूप ऐसा एक झूठा संसार जो एक ब्राह्मण आत्मा अपने अंदर निर्माण कर लेती है और उसमें फंस जाती है उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे भी पहले और एक बात, एक घोड़सवार किसी वीरान जंगल से गुजरता और देखता है कि एक व्यक्ति सोया पड़ा है और जब सोया था उसका मुंह खुला था और वो घोड़सवार देखता है कि उस सोए हुए व्यक्ति के मुंह में एक छोटा सा सांप चला जाता है तो वो घोड़सवार और उसके दो साथी जो पीछे होते हैं वो उस सोए हुए व्यक्ति को जगाते हैं पकड़ते हैं और जबरदस्ती उसको पास ही में एक नदी बह रही होती है वहां ले जाते हैं। वो व्यक्ति चिल्लाता है मुझे छोड़ो मुझे क्यों पकड़ रहे हो, ये कैसी अमानवता है, क्या मनुष्यता तुम भूल गए, हैव यू फॉरगॉटन द ह्यूमैनिटी। वो चिल्लाता है वो नहीं सुनते और जबरदस्ती उसे पानी के पास ले जाते हैं और जबरदस्ती उसे बहुत पानी पिलाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पीना, फिर भी उसकी एक नहीं सुनते और वो तीनों मिलकर उस व्यक्ति को इतना पानी पिलाते। वो कहते हैं बस, वो कहते हैं नहीं पियो नहीं तो मारेंगे, और जब बहुत पानी पी लेता है तो उसको उल्टी होती है और वो सांप बाहर गिरता है। तो वो व्यक्ति कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये हुआ कैसे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहते हैं तीन कारण थे, यदि हम तुमको बताते तो शायद ऐसा होता कि तुम डर जाते, इतना डर जाते कि डर के मारे ही जो सांप ने ना किया तुम्हारे साथ हो जाता। दूसरा, तुम मानने को तैयार नहीं होते। हम कहते तुमको कि तुम्हारे मुंह में सांप चला गया और तुम कहते सांप मेरे मुंह में हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो। और तीसरा, यदि तुम मान भी जाते तो तुमको समझाने में हमको टाइम लगता, तुमको मनवाने में हमको टाइम लगता और समय कम था इसलिए हमने तुमको जबरदस्ती लेके गए, क्योंकि तुम्हारे मुंह में जो सांप गया वो तुमने नहीं देखा हमने देखा, इसके लिए इलाज हमें करना था और हमने जबरदस्ती की। तुम नहीं चाहते थे पर तुमको लेके गए और तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और जबरदस्ती पानी पिलाया और उसके बाद ही वो सांप बाहर आया। द्वापर में सांप ने कब प्रवेश किया चेतना में शायद पता ही नहीं, क्योंकि आत्मा मूर्छित थी, विकार कब घुस गए पता ही नहीं चला, क्योंकि देहभान का मुंह खुला था। भगवान आए क्या कर रहे हैं वो भी पानी पिला रहा है, समझाता भी है कि ऐसा हुआ और जो नहीं समझते उनको कभी कभी जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। तो माया का झूठ माया का सत्य स्वरूप इस जगत का सत्य स्वरूप ऐसी आत्मा भ्रमित हो गई है, माया के संस्कारों से ऐसी संस्कारित हो गई है कि उसे पता ही नहीं, उसे खबर ही नहीं भगवान आए हैं। वो सत पानी, वो ज्ञान का अमृत पिलाने, और जब हम उसे पीते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, धीरे धीरे वो सारे विकार बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी है माया के उन असत्य स्वरूपों को जानना, समझना, बारीकी से पहचानना, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं ये माया है, तब तक हम आराम से सोए रहेंगे। जैसे भगवान के 24 अवतार गिनाए हैं भक्ति मार्ग में, मुख्य रूप से सिख धर्म में दशम ग्रंथ में 24 अवतार बताए हैं विष्णु के, भगवान के। भागवत कहती है असंख्य अवतार है, मुख्य 10 दश अवतार। तो जैसे भक्ति मार्ग में भगवान के 10 अवतार का गायन है, जो कभी कभी साकार मुरली में आता है कि 24 अवतार से पेट नहीं भरा तो दुनिया वालों ने क्या कर दिया, मुझे कण कण में टिककर भीतर में डाल दिया। तो जैसे भगवान के 24 अवतार का गायन है, आज की इस चर्चा में, इस ब्राह्मण जीवन में माया के 24 सूक्ष्म अवतार, माया के 24 सूक्ष्म रूप, वो झूठ, वो असत्य, वो मिथ्या स्वरूप जिससे चेतना भ्रमित है, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ए अर्थात अटेनमेंट्स, संसारिक प्राप्तियां, भगवान मिल गया, भगवान की ईश्वरीय प्राप्तियां मिल गई, परंतु फिर भी आत्मा अब भी दौड़ रही है संसार की उन अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे। ऊपर से नाम सेवा के लिए है, परंतु उसमें ऐसी फंस गई है, उस दौड़ में, नाम की दौड़, मान की दौड़, सम्मान की दौड़, कि वहां दौड़ते दौड़ते उन लौकिक प्राप्तियों के पीछे, उन सांसारिक प्राप्तियों के पीछे, उन वर्ल्डली अटेनमेंट्स के पीछे ईश्वरीय प्राप्तियां भी कुछ है, ये कहीं ना कहीं विस्मृत हुआ है। और यदि वो वर्ल्डली सांसारिक जागतिक प्राप्तियां न भी हो, तो इस परिवार में, इस ब्राह्मण समाज में सम्मान, प्रेज, एप्रिसिएशन, ये सब हद की प्राप्तियां है। ईश्वरीय प्राप्तियां क्या है वो भूल गई है। वो कभी प्राप्त होता था अमृत विला, अतिंद्रिय सुख, जहां आत्मा एकदम डिटैच हो जाती थी शरीर से। हर एक को याद होगा वो दिन, वो बचपन के दिन, जब हम ज्ञान में आए, किन उमंगों से आए थे, क्या भगवान का इसलिए बनने आए थे कि यहाँ भगवान के घर में नाम मान शान मिल जाए, शायद कोई नहीं। क्या इसलिए आए थे कि भगवान के घर में हम सेवाएं करेंगे, फिर नाम होगा और फिर हद की प्राप्ति होगी, शायद कोई नहीं। परंतु जैसे जैसे आगे बढ़े, और जैसे जैसे तपस्या कम होती गई, और जैसे जैसे किसी और माया ने घेर लिया, ऊपर से कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ये माया है, ऊपर से हर जगह लिखा है सेवा सेवा सेवा, इसलिए दिखाई भी नहीं पड़ता कि यही माया है। परंतु इस ब्राह्मण जीवन में जो भी हद की प्राप्तियां है, जो भी सांसारिक प्राप्तियां है, सांसारिक और हद की उपलब्धियां है, वो सभी माया का एक रूप है। जिसने इसको जाना पहचाना वो आगे है, जिसने इसको कम पहचाना वो थोड़ा पीछे है। जिसका ध्यान इन्हीं चीजों पर है, उसकी तुलना उस चील के साथ की जाती है भक्ति मार्ग में। वो चील है, आकाश में उड़ रही है बहुत ऊंचा, पर ध्यान मांस का एक टुकड़ा धरती पर गिरा है उसके ऊपर है। उड़ान ऊंची है, ऊपर है, सब लोग देख रहे हैं, ऊंचा ऊंची उड़ रही है ये चील, परंतु उसका ध्यान कहां है? उस मांस के टुकड़े पर जो कहीं गिरा है नीचे। पुरुषार्थ के आसमान में हम उड़ रहे हैं, परंतु ध्यान हद के किसी मान, हद की कोई प्राप्ति, कोई प्रेज, कोई अप्रिसिएशन, कोई रिकॉग्निशन, कोई एक्नॉलेजमेंट, यहां का कोई सम्मान, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कोई अवार्ड जिसमें नाम आ जाए, ये एक माया का ही स्वरूप है, झूठ स्वरूप है। और हो सकता है हमने इसे सत्य समझ रखा है। दूसरा है बी, बी अर्थात ब्यूटी, सौंदर्य। देह का जो सौंदर्य है भ्रामक सौंदर्य है। सारा संसार इसी देह के सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमता है। सारी किताबें, सारा समाज, सारा मीडिया देह को ही सुंदर समझता है, परंतु यह देह और उसका जो सौंदर्य है, ये जो रूप है, भ्रामक है, इमेजिनेशन मात्र है। ब्यूटी व्यक्ति में नहीं, इमेजिनेशन में है। परंतु फिर भी माया इस रूप से ब्राह्मणों के पास भी आती है, दोस्ती उनसे की जाती है जो रूपवान है। कम ऐसा होता है कि दो व्यक्ति इसलिए दोस्त है कि केवल गुणों का आकर्षण है, अज्ञात अनस्पोकन देह का भी आकर्षण है, जबकि यह देह और उसका सौंदर्य भ्रामक है। तुलसीदास इतना पत्नी मोह में ग्रसित था कि जब पत्नी मायके गई, सब जानते हैं किस तरह वो वहां पहुंचा, कितनी कठिनाइयों का सामना किया, और जब पहुंचा भी तूफानी रात में, उस नदी को कैसे उसने पार किया और कैसे उस सांप को पकड़कर घर के ऊपर चढ़ा। तब उसकी पत्नी ने उससे एक बात कही थी कि जितना प्रेम तुम्हारा मेरे इस देह से है, उतना ही यदि राम से करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। परंतु देह खींचता है, आत्मा की तरफ ध्यान कम, देह की तरफ ज्यादा। काला गोरा, काली गोरी, ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इस चमड़ी को उधेड़ दो, कहां है सौंदर्य? चमड़ी की जगह जो चमड़ी के अंदर है, मलमूत्र से भरा यह देह, कहां है सौंदर्य? कहां है सौंदर्य उन अस्पताल में पड़े रोगियों में? कहां है सौंदर्य उस वृद्धावस्था में? सौंदर्य देह का नहीं, चेतना का होता है, ज्ञान है, फिर भी देह खींचता, देह की तरफ दृष्टि जाती, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 72, शरीर साफ है, उसमें विष होता है। इसलिए सभी कुमारों से मुलाकात आज से प्रतिज्ञा करेंगे कि केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, सांप को नहीं। फिर से अपनी प्रतिज्ञा पवित्रता की रिवाइज करनी है। जिस व्यक्ति में व्यक्ति फंसा है, वो हो सकता है प्रेम कम वासनाधिक। जिस व्यक्ति से दोस्ती है, हो सकता है कि वो संबंध देह के ही सूक्ष्म आकर्षण पर आधारित है। यदि उस व्यक्ति का सौंदर्य बाह्य छीन लिया जाए तो शायद इंटरेस्ट खो जाए। स्वयं को चेक करना, क्योंकि देह का यह सौंदर्य भ्रांति मात्र है, इल्यूजन। सच्चा सौंदर्य केवल आत्मा में है, केवल और केवल आत्मा में। सच्चा यौवन भी केवल आत्मा में ही है। हमारा यह भाग्य है कि आज मधुबन में दादी जी है। चीर यौवन अपनी परम सुंदरता के साथ प्रकट जब होता है, तब कह सकते हैं उस चीर यौवन का नाम दादी जानकी दिया जाए। कभी बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कहा था कि जनक की दो कहानियां हैं। एक वो जनक है जो शास्त्रों में है, दूसरा जनक है गृहस्थ में रहते ट्रस्टी और दादी से बाबा ने कहा था, और तुम हो बाप की जनक। देह और देहभान से परे उठ जाना, ये पुरुषार्थ है। तो दूसरी माया है सौंदर्य, तीसरा है सी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, संसार की परंपराएं जो चल रही है कब से, और ज्ञान में आ गए और भगवान का बन गए और भगवान के ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु संसार की वो परंपराओं को अभी भी नहीं छोड़ा है, अभी भी पकड़े हुए है। जैसे बताया उस कहानी में, वो जो पादरी था और जिसके सामने सब झुक रहे थे, जीसस क्राइस्ट स्वयं खड़ा था पर उसको कोई मानने को तैयार नहीं था। वो पादरी एक परंपरा का प्रतीक था, उसका अपना कुछ नहीं था, वो उस परंपरा को दर्शा रहा था जो सदियों से चली आ रही थी। वो सम्मान शायद उस परंपरा के प्रति था। हम भी ऐसी सूक्ष्म संसार की परंपराओं को अब भी छोड़ नहीं पाए हैं, अभी भी ऐसे सूक्ष्म अंधविश्वास ब्रह्मा भगवान का बनने के बाद भी हमारे जीवन में एक सुपरस्टिशंस की लिस्ट चल रही है। ये भी माया का एक रूप है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ऐसी कुछ कुछ मान्यताएं जो हमारी अज्ञान काल में थी, ज्ञान काल में अभी भी चल रही है। जो अज्ञान काल में सोच थी और जो भय था, वो भय सोच मत परंपरा और उस परंपरा का लगाव अभी भी ज्ञान मार्ग में भी चल रहा है। वो कौन सा है, हर एक को अपनी चेकिंग खुद करनी है कि वो कौन सी आदतें या परंपराओं से मेरा लगाव जो वहां था जो अब भी है, वो कुछ भी हो सकता है, वो बिल्ली का गुजर जाना, कहीं कार्य में जा रहे हैं, सेवाओं में। माताएं क्या करेगी अगर सुबह सुबह अमृत वेला उठे और दरवाजा खोलो तो देखो एक नींबू है और उसमें एक सुई, तो क्या करेगी? डर तो नहीं जाएगी? वो जो भय था भक्ति मार्ग का, वो जो बातें थी वहां की, वो अभी भी, वो सूक्ष्म भय अभी भी है, और ये भी एक माया का रूप है। एक बहुत बड़े इंजीनियर जर्मनी से इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेकर आए, अंधविश्वास को बिल्कुल नहीं मानते थे, पर एक बार बाहर निकल रहे उनके बेटे ने छींक दिया, जाना रुक गया। क्यों? वो कहने लगे मैं ये सब बातों को नहीं मानता, पर न जाए तो क्या नुकसान है, न जाए तो क्या पकड़ है अंधविश्वास की। अब सबको काम दे रहे हैं, ऐसे वो कौन से भक्ति के अंधविश्वास है जो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान मार्ग में भी चल रहे, उसकी एक लिस्ट बनानी है और देखना है मैं उससे कहां तक मुक्त हूं। भक्ति मार्ग के अंधविश्वास जो ज्ञान मार्ग में अभी भी चल रहे हैं, ऐसी बहुत सी माताएं हैं सेंटरों पर, मुरली सुनने के बाद जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में जाना ही है और संतोषी मां के मंदिर में भी जाना है, कहीं मां अप्रसन्न ना हो जाए। बैलेंस, भक्ति भी चालू है और ज्ञान भी चल रहा है। गणपति अभी भी बिठाया जा रहा है घर में, कहीं गणपति नाराज ना हो जाए। उसके बाद है डी, डी अर्थात डाइट, आहार। एक अव्यक्त मुरली है 16th February 1988, बाबा ने कहा ये जो ब्रह्मा भोजन है दुख भंजक है, दुआ और दवा इसमें समाई हुई है, बहुत महिमा गाई है, परंतु कहीं भोजन ही माया का रूप तो नहीं बन गया कि दिन रात उसी का चिंतन चल रहा है। सुबह उठो तो नाश्ता क्या करना है, नाश्ता खाने के बाद दोपहर में क्या खाना है, दोपहर का खाने के बाद रात को क्या खाना है, दिन रात भोजन 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 भोजन। विवेकानंद से कहीं किसी ने पूछा था विदेश में, तुम्हारे देश में इतने धर्म है फिर भी धर्म का ऐसा पतन क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा था मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाकर भस्म हो गया है, क्योंकि दिन रात उसी का चिंतन चल रहा है, वही सोचते रहते हैं, धर्म रह गया बाजू में, भोजन ही धर्म बन गया है। रिलीजन इज किचन एंड कुकिंग पॉट इज गॉड। सुबह से लेकर रात तक तपस्या, ओवर ईटिंग से जितना नुकसान है, जितनी बीमारियां है उतनी कम खाने से नहीं है, ऐसा कम सुना है कि कोई कम खाने से बीमार पड़ा है। ओवर ईटिंग नाम का एक भयंकर रोग है, अति खाना। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्वयं को देखेंगे कि मेरे जीवन में माया का झूठ सूक्ष्म मिथ्या स्वरूप कौन सा है। सम्यक आहार, तीन चीजें इसमें होनी चाहिए। वह भोजन जो आलस्य ना उत्पन्न करे, वह भोजन जो उत्तेजना ना उत्पन्न करे, और वह भोजन जिससे तंदुरुस्ती हो। ये तीन चीजें हमारे आहार की होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड डाइट जहां पर है और अनकंट्रोल्ड टंग जहां है, वहां पर बीमारियों का वाहन होगा और बीमार होने के बाद पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। बहुत सारी बीमारियों का हम ही अपने गलत आहार से आह्वान करते हैं। योगी अर्थात संयम, इसको भूलना नहीं है। तो डाइट ही कहीं माया तो नहीं बन गई है, हर चीज को तेल और मिर्च और मसाला, योगी अर्थात इंद्रिया शीतल है। स्वयं की चेकिंग करनी है आहार के संबंध में। अगला है ई, ई अर्थात एंटरटेनमेंट। इस संसार के चीप एंटरटेनमेंट हमारे नहीं है, हमारे योगी जीवन के विरुद्ध है। और एंटरटेनमेंट जो भी है उसकी उनको आवश्यकता पड़ती है जिनको शायद भगवान के अतिरिक्त भी और कोई एंटरटेनर है संसार में, ऐसा अनुभव है। या फिर उस परम शोमैन एंटरटेनर जो परमात्मा धरा पर आया है, उसके प्रेम में जो एंटरटेनमेंट है उसके कोई अनुभव नहीं, इसलिए संसार के चीप नीच निचले लोअर लोएस्ट एंटरटेनमेंट में भाग रही है। वो सब देखकर और वो सब सुनकर खुश होती है, पर ऐसे एंटरटेनमेंट से प्राप्त खुशी भी अल्पकालीन होगी, सतही होगी, सुपरफिशियल होगी। योग में ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोग शायद हमने अभी नहीं किए, ज्ञान की उस गहराई में शायद हम अभी नहीं गए। ज्ञान ही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, तपस्या ही सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है। इसका शायद अनुभव नहीं किया, इसलिए बुद्धि संसार में सारा जो एंटरटेनमेंट के साधन सामग्री है उसमें अभी भी जाती है। भगवान मिल गया, परंतु बुद्धि संसार से हटी नहीं है, अभी भी वो सब देखना, वो सब सुनना इच्छा होती है। विशेषकर युवक यूथ, माइंड उधर भागता है। ज्ञान की गहराई को बढ़ाना है, तपस्या की गहराई को बढ़ाना है, मन को योग और परमात्मा प्रेम से भर देना है। इतना भरना कि उसे फिर संसार के किसी मनोरंजन की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार के मनोरंजन दलदल है, खींच लेते हैं, सब कर लेते हैं, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। वो एंटरटेनमेंट कुछ भी हो सकता है, हर एक इसकी चेकिंग करे कि माया का ये रूप कहीं मेरे जीवन में तो नहीं चल रहा। जो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थक गए सारे दिन भर सेवाएं करते करते, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, परंतु वो यदि विकारी एंटरटेनमेंट है तो विकारों की स्मृतियों को जगाएगा, क्योंकि स्मृतियां भी है। आज सुबह की साकार मुरली, जन्म जन्म से दुखी और बीमार, बीमारी अब बढ़ गई है। बाप इंजेक्शन लगाते हैं, बीमारी अब बढ़ गई है। अज्ञान में थी, ज्ञान में आए बीमारी दब गई। पुरुषार्थ कम हुआ बीमारी फिर आएगी, पुरुषार्थ नष्ट हुआ बीमारी और बढ़ जाएगी। जो बीमारी अज्ञान में भी नहीं थी वो इधर होगी, जो तृष्णाएं वासनाएं उधर कभी नहीं आई थी वो यहां जागेगी। ज्ञान और ये संसारिक इच्छाएं, और फिर असमंजस्य, कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं पता नहीं। एफ अर्थात फैशन, क्रीम पाउडर डाय सेंट कलर्ड ड्रेसेस टैटू परफ्यूम मेहंदी, फैशन के रूप हजार, व्हाइट में भी फैशन, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, हमारा तापसी जीवन है। तुम वनवाह में हो, कई बार मुरलियों में आया है और एक तापसी जीवन वाले व्यक्ति के लिए ये सब विष की भांति है, तपस्या में बाधा है। इसलिए फैशन की यदि माया जीवन में चल रही है, जो हम सोच रहे और नया क्या है, और नया क्या है, और नया क्या है, वो नया क्या है, नया क्या है, नया क्या है, फंसा देगा। पुरुषार्थ के मार्ग पर अग्रसर और बीच में सूक्ष्म ये माया, पता भी नहीं चला कब आ गई और पता भी नहीं चल रहा है कितना समय उसमें जा रहा है। जो नहीं करते बहुत अच्छा, पर जो उसमें फंसे हैं उनको स्वयं को इस झूठी माया से बाहर निकालना है। ये काया भी तो झूठी है, कब तक सचाएंगे इसको जी। गेम्स दो प्रकार है, या आप तीन कहो, आउटडोर, इंडोर और अभी डिजिटल ऑनलाइन। कितना समय हमने देखा है लोग बैठे बैठे गेम्स खेलते रहते हैं मोबाइल पर। खेलकूद शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु यदि वो तपस्या का समय है, यदि वो नुमाश्याम का योग का समय है, और यदि वो इंटरनेशनल योग का समय है, ज्ञान का समय है, और उस समय हम तंदुरुस्ती के नाम पर खेलकूद में लगा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे गेम्स माया का ही रूप है। या हम नहीं खेलते परंतु उन खेलों में बहुत इंटरेस्ट है जो टीवी पे चल रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, या कोई भी मैच। आपने देखा होगा सड़क पर चलते हुए टपरी, कोई चाय की दुकान जहां पर टीवी हो और लोग खड़े हुए मैच देख रहे, कितना एक्साइटमेंट है उनके अंदर। और सोचो उसी समय हम वहां हैं और हमारा उसी समय शरीर छूट गया, किस याद में हम जाएंगे? उस उत्तेजना के क्षण में शरीर छूट रहा है, क्योंकि उस गेम में हार जीत जबरदस्त, उसका प्रभाव सूक्ष्म में मन पर है। तो ये सारे गेम्स चाहे देखना या खेलना, खेलना आवश्यक है, परंतु समय देखकर, अपनी प्रकृति को देखकर, उसी में नहीं लग जाना है। हम यहां कोई पहलवान बनने नहीं आए हैं, वी आर स्पिरिचुअल जिम्नास्ट्स। संसार के इस अखाड़े में हम आध्यात्मिक पहलवान बनने हैं, स्पिरिचुअल रेसलर्स, स्पिरिचुअल बॉक्सर्स। हमें कुछ उस तरह की बॉडी नहीं बनानी और दिन रात उसी में लगे रहे, दिन रात वही कर रहे हैं। हमने देखा है कुछ युवकों को उसी में लगे हुए और पुरुषार्थ रह गया बाजू में, मुरली के लिए समय नहीं है, जिम जिम जिम, और सारा पुरुषार्थ वजन कम करने के लिए लगा हुआ है, और एट द कॉस्ट ऑफ तपस्या। ये माया का ही रूप है। एच हैप्पीनेस, सांसारिक सुख, संसार के जो भी सुख है क्षणभंगुर है। संसार के सुखों से प्राप्त खुशी अल्पकालीन है, अब है और अब नहीं, ये तो द्वापर से भोगते आ रहे हैं। भगवान का बनने के बाद भी सांसारिक सुख में जिसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे लगते हैं, भोगने की बहुत लालसा है, वो भोगना अर्थात इचिंग की तरह है खुजली। जब तक खुजली करो तो ठीक लगता है, रोक दो तो फिर इच्छा होती है, फिर खुजली करो, और फिर खून भी आता है, फिर रोकते हैं, परंतु फिर खुजली करता है। इच, वर्ल्डली हैप्पीनेस इच की तरह है, वो इचिंग की तरह है। तो क्या करना है, तटस्थ बैठ जाओ, वो रुक जाएगी। सुखाने दो, सुख जाने दो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें अतीन्द्रिय सुख को पाना है, संसारिक इंद्रिय शारीरिक सुख नहीं, क्योंकि सभी शारीरिक सुखों के साथ फ्रस्ट्रेशन आएगा, दुख आएगा, पश्चाताप आएगा। इंद्रिय इंद्रिय जब मिलते हैं, टच बॉर्न हैप्पीनेस जो है, टच टच से उत्पन्न सुख जो है, कंडीसिव टू पेन, सब कुछ दुख में ही रूपांतरित होगा। वो हर सुख जो टच से उत्पन्न है दुख में परिवर्तित होगा। हमारा अतीन्द्रिय सुख है, जिसकी परिभाषा है वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बिना प्राप्त किया जाए, सुपर सेंशुअस हैप्पीनेस, वो सात्माभिमानी स्थिति में ही प्राप्त होगी, जिसके लिए तपस्या की आवश्यकता है। आए आए से इंटरनेट, आए से इंटरनेट एक बहुत बड़ा जंजाल जिसमें इस धरती की हर आत्मा फंसी है। वो जब तक सेवा के लिए है और योग के लिए है, और वो जब तक ज्ञान समझने के लिए, तो ठीक, जैसे ही इससे नीचे उतरेंगे माया ही माया है। इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा, सूचनाएं, ज्ञान बहुत अच्छा, परंतु जैसे ही नीचे उतरे कि गए, जैसे वो नेचुरोपैथी में जाते हैं 7 days डिटॉक्स करते हैं, वैसे किसी ने एक बहुत सुंदर बनाया है 7 दिन का डिटॉक्स। मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, वेनसडे क्या करना है। मंडे ये बंद फेसबुक, ट्यूसडे ये कम से कम, इस तरह से अपना एक डिजिटल टाइम टेबल बनाना है कि हमारा इंटरनेट पर कितना समय जा रहा है। कहीं वही माया तो नहीं बन गई है जीवन की, उसी को देखते देखते ही हम डूबे तो नहीं रहते। अगला है जे, जे अर्थात जर्नीज, अर्थात ट्रैवलिंग, इधर से उधर, उधर से उधर ट्रैवलिंग चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है। सेवा यदि लक्ष्य है बहुत अच्छा, परंतु सेवा लक्ष्य नहीं है, कुछ और लक्ष्य है। केवल घूमना फिरना जहां लक्ष्य है, यही माया है। माया का भी ये एक जबरदस्त रूप है। संसार की आत्माओं को देखो तो अभी यहां जाके आए, अभी वहां जा रहे, अभी वहां गए, अभी वहां गए, केवल घूम रहे हैं। यदि ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण बनने के बाद इसी माया में फंसे हैं, तो पुरुषार्थ कब करेंगे? अमृत वेला कहां होगा? ट्रेन में, फ्लाइट में, हुआ तो हुआ, छूटा तो छूटा। सेवा यदि है तो बहुत अच्छा, परंतु सेवा छोड़कर कुछ और ही लक्ष्य है, साइट सीइंग मात्र, तो ये साइट सीइंग ही माया है, तो माया का ये भी एक रूप है। अगला है के अर्थात काम सुख। दो व्यक्तियों के बीच जैसे ही ज्ञान की कटार निकल जाएगी तो काम की कटार चलेगी, और काम सबसे बड़ा शत्रु मुरलियों में कहा है। क्यों कहा है? गहरे राज है। मनुष्यता का जो पतन हुआ है वो इसी एक विकार के कारण हुआ है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के बीच जो सीमा रेखा है वो यही है, इधर नहीं इधर है, और ये माया का बहुत बहुत सूक्ष्म रूप है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। शायद वो कुछ और है, शायद वो आसक्ति है, और वो काम का ही एक रूप है। अपने मन को संपूर्ण निर्मल और संपूर्ण स्वच्छ करना, अर्थात इस विकार के हर एक अंश से मुक्त करना, पवित्रता की साधना, पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की ड्रिल होती रहे। आर कहां पहुंचे हम? के बाद एल, लव, संसारिक प्रेम। संसार में जिसको प्रेम कहा जाता है वो संसारिक प्रेम है। जब भगवान मिल जाए उसके ऊपर, उससे परे और कोई प्रेम नहीं है। इसके लिए संसार के सारे प्रेम नीचे और परमात्मा का प्रेम सबसे ऊंचा। एल के बाद एम, एम अर्थात मूवीज और सीरियल्स, फिल्म, फिल्में देखना। कोई कहते हैं हम शिक्षा के रीति से देखते हैं, परंतु वो भी खींचती है, आकर्षण है उसमें भी, और वो भी माया का ही एक रूप है। क्या हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं, वो भोजन है जो अंदर जा रहा है, और उसी का चिंतन चलेगा, उसी की कल्पना है, इमेजिनेशन होगी, और आत्मा को गिराएगी। एम के बाद एन, एन अर्थात नेम एंड फेम, या कहो नशा, एडिक्शंस। आज सुबह एक भाई अनुभव सुना रहे थे, बाबा का बनने के बाद बहुत सारे ड्रग्स को एडिक्ट थे, 14 साल तक नशा किया, और एक सेकंड में जैसे ही बाबा का बना सब छूट गया, संसार में उस तरह के नशे हैं, ज्ञान में आने के बाद भी बहुत सारे सूक्ष्म नशे हैं, और सबसे बड़ा एक एडिक्शन है गॉसिप्स, पर चिंतन पर दर्शन, किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, दूसरे के जीवन में ताक झांक करना, ये एक लत है, एडिक्शन है, उस सेवा केंद्र में, उस सेंटर में, मधुबन में, दूसरी जगह, दूसरों के घर क्या चल रहा है, इस ऑफिस में, उस ऑफिस में ताक झांक, ये बहुत बड़ी माया है। यदि ये है तो स्वयं को से मुक्त करना है गॉसिप से। एन के बाद ओ अर्थात वन सेल्फ, मेरी मत, मेरे इंटेंशन, मेरी सेवा, मैं ही सब कुछ। आज सुबह का वरदान दो कारण है, दो बीज है विघ्नों के, कौन से? अभिमान और अपमान। मैं कर सकता हूं, जितना अधिक अभिमान उतना अधिक अपमान की फीलिंग होगी, मुझे नहीं बताया, मुझे इंक्लूड नहीं किया, मुझे मेरे से बिना पूछे ये किया गया, अभिमान बहुत ज्यादा, और जब अपमान होगा तो दर्द भी बहुत होगा। वन सेल्फ के इर्द गिर्द जो पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्ट, अपने ही विषय में सोचते रहना, मैं, ये माया का ही जबरदस्त रूप है। बाबा ने कहा कंबाइंड स्मृति में रहो। एन के बाद पी, पोजीशन, पद, प्लेसेस, पर्संस, पॉलिटिक्स, ये सब माया बन सकती है। इंटरेस्ट इतना ज्यादा उसमें कि उसी का सोच रहे और उसी का चिंतन कर रहे, वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, पद भी हो सकता है, वही माया बन चुकी है। प्रोफेशन भी हो सकता है, वो जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में ही माया है, और ज्ञान योग का कोई समय नहीं रहा। पी के बाद क्यू, क्वालिफिकेशंस व्यक्ति की। कहते हैं जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है व्यक्ति छोटा छोटा होते जाते हैं, क्वालिफिकेशन की जगह ज्यादा, व्यक्ति कम। उनका अहंकार, संगम युग परमात्मा क्वालिफिकेशन से भरने का समय, संसार की डिग्रियों के पीछे भागने का नहीं, ये भी करूं वो भी करूं, ये भी करूं वो भी करूं, समय कौन सा है सोचना है, जो ये सोच रहे हैं हमें बहुत डिग्रियां लेनी है संसारिक, समय कौन सा है? आर रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध है अलौकिक है, भाई बहन वाले हैं, या उसमें कुछ और ही दूसरे संबंध चल रहे हैं साथ साथ, उन संबंधों को प्योर बनाना है, डिटैच बनाना है, अनासक्त बनाना है। आर के बाद एस, सक्सेस, सफलता। व्यक्ति सफलता से ज्यादा सीखता है या असफलता से? असफलता से। सफलता 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 चाहे सेवाओं की या और किसी बात की भी माया का रूप बन सकती है, यदि उन सफलताओं का ही अहंकार आ जाए, क्योंकि संगम युग पर जो सफलताएं हो रही है परमात्मा से आ रही है, मैं आ गया और मैंने किया और फिर सेवा सफल हुई, माया का रूप चालू, ये भी एक झूठा रूप है। एस के बाद एस, टी, टीवी एंड मोबाइल, कितना हम देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, और कितना इस मोबाइल के वश है, इसका उपयोग सेवाओं के लिए हो, व्यर्थ की चिट चैटिंग, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के डिस्कशन, टाइम वेस्ट है संगम युग पर। यू, उत्सव, संसार के जो सेलिब्रेशंस है, अननेसेसरी सेलिब्रेशंस, जिसमें फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन और टाइम और मनी और सब कुछ वेस्ट होता है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे अलौकिक उत्सव है, हमारे परमात्मा उत्सव है, आंतरिक आत्मा का उत्सव है, ये जीवन उत्सव का है। बाह्य उत्सवों में ज्यादा खो जाना, डेकोरेशंस सब माया है, सादगी जीवन है, साधारणता, सिंप्लिसिटी इज लाइफ। उसके बाद वी, जो कुमार और कुमारिया है उनके लिए, और जो गृहस्थ है उनके लिए भी, विवाह, मैरिज, जो उसमें फंसे नहीं है, जो अभी गए नहीं है, उनको स्वयं को फिर सावधान करना है, विशेष रूप से कुमार, क्योंकि माया की वहां से प्रवेशता, पारस्परिक बंधन है, वो दोनों एक दूसरों को फांसते हैं या बांधते हैं और बंध जाते हैं, पर जो ऑलरेडी उस जीवन में है उन्हें अपने गृहस्थ को पवित्र गृहस्थ बनाना है, जनक समान ट्रस्टी बनकर रहना, माया में नहीं फंसना, ये भी एक सूक्ष्म रूप है। और लास्ट डब्लू वेल्थ, वेल्थ अर्थात धन, धन की लोलुपता, धन का आकर्षण, धन की दौड़। चाहे ये भी सोचे कि बाबा हम ये आपके लिए कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मुरलियों में था, बाबा हम लॉटरी लेते हैं, ले खरीदे, बाबा ने क्या उत्तर दिया था। ये जितनी 24 बातें बताई, इसमें से देखना है सूक्ष्म में मेरे जीवन में कौन सी माया चल रही है। ये तो कुछ ही बातें हैं, ऐसी असंख्य और ढेर हो सकती है जो केवल हर एक व्यक्ति को खुद ही पता है। ये संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है, तो मेरे जीवन में संपूर्ण सत्य होना चाहिए, सफाई सच्चाई। जरा भी झूठ है तो भगवान को वो पसंद नहीं। एक लास्ट बात बताएंगे फिर इस क्लास को पूरा करेंगे। एक व्यक्ति, एक किसान सुनता है कभी, जो बहुत गरीब है, उसको एक सन्यासी आकर बताता है कि तुम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाओ जहां जमीन बहुत सस्ती है। पखोम नाम का वो व्यक्ति, लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई 1886 की ये कहानी, वो छोड़कर वहां जाता है और लोग कहते हैं यहां से जितना तुम भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी। वो भागने लगता है, भागने लगता है, भोजन को छोड़ देता है, खाना और पानी फेंक देता है, भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। शर्त होती है उसी स्थान पर वापस आना है, उतनी जमीन तुम्हारी। बहुत खुश भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। एक समय आता है दोपहर, उसको वो सोचता है अब मैं वापस लौट चलूं, परंतु सामने की जमीन बहुत अच्छी होती है। आकर्षण और ज्यादा बढ़ता है और भागता है और भागता है। 4 बज जाते हैं, सोचता है अब वापस लौटूं, परंतु आकर्षण और जमीन बहुत अच्छी, और थोड़ा भागता है। अंत में जब भागते 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 वापस लौटता है, गांव के लोग दिखाई देने लगते हैं। इतना तेजी से भागता है कि पहुंचने से पहले, उस लकीर से पहले धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। हाउ मच लैंड डज द मैन नीड, कितनी जमीन चाहिए। ये जीवन का अंत है। भाग रहे भाग रहे भाग रहे, चाहे धन है, चाहे पद है, चाहे प्रतिष्ठा है, अंत में क्या बच जाएगा? कुछ भी नहीं हाथ में। तो इस माया को अपने जीवन से मुक्त करना है स्वयं को, और ऐसा एक सच तो विठो नच जीवन की अवधारणा जीवन में करनी है। ओम शांति।